अहाना के पैरों को देखकर अक्षय ने कहा, अहाना, पैर दिखाइए, सूजे हुए लग रहे हैं। वो बेड से नीचे लटके उसके पैरों को उठाकर बेड पर सीधा रखा। अहाना ने अपनी नाइटी जरा ऊपर सरकाई और सहमति में सर हिलाया। सूज गए हैं और दर्द भी कर रहे हैं। मैं अभी सरसों का तेल गरम करके लाता हूँ, फिर मालिश कर दूंगा। तब तक आप ऐसे ही पैर फैलाकर बैठिए। इतना कहकर अक्षय झट से कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो गुनगुना सरसों का तेल लेकर लौटा और आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। अहाना लबों पर सौम्य सी मुस्कान लिए एकटक उसे निहार रही थी। बड़ा प्यारा लगता था उसे यूं उसकी केयर करते हुए। अक्षय ने उसके पैरों की मालिश की, फिर हल्के हाथ से उसकी पीठ की भी मालिश की और हाथ धोने चला गया। अहाना बेड पर लेटी बेचैनी से करवट बदल रही थी। बढ़े हुए पेट के कारण ठीक से करवट भी नहीं ले पा रही थी। उसे किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। अक्षय बेड के दूसरे तरफ बैठा लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था, पर उसका ध्यान पूरा अहाना पर ही था। क्या हुआ आपको, आज सोना नहीं है या लाइट्स ऑन है इसलिए बेचैनी से करवट बदल रही हैं? अक्षय की आवाज़ अहाना के कानों से टकराई और वो पलटकर बेचैनी भरी निगाहों से उसे देखने लगी। नहीं, वो बात नहीं है, बस हम सो नहीं पा रहे, अजीब सी बेचैनी और घुटन सी हो रही है। बाहर चले, बालकनी में खुले में अच्छा लगेगा आपको, अक्षय ने सुझाव दिया और अहाना ने झट से सहमति में सर हिला दिया। अक्षय ने उसे सहारा देकर उठने में मदद की, फिर संभालकर बालकनी में ले आया। कुछ देर दोनों टहलने के बाद वहां लगे काउच पर बैठ गए। अहाना बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं थी। अक्षय ने उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाया और अहाना ने उसके कंधे पर सर रखते हुए अपनी आंखें मूंद ली। अब बेहतर लग रहा है आपको? अक्षय ने गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया, जिस पर अब धीरे धीरे सुकून अपने पैर जमाने लगा था। अब ठीक लग रहा है, अहाना ने सहमति में सर हिला दिया। कुछ देर दोनों वहीं बैठे रहे। रात गहरी हुई तो अक्षय अहाना को कमरे में लेकर आया। अब उसे उठने बैठने के साथ सोने में भी बहुत परेशानी होती थी, पर उस नन्हे मेहमान के लिए वो मुस्कुराकर हर तकलीफ सह जाती थी और अक्षय भी उसका पूरा साथ देता था। अभी भी अहाना उसकी गोद में सर रखकर लेटी थी और अक्षय प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। अक्षय जी, आपने लिटिल चैंप का कुछ नाम सोचा? आंखें मूंदे लेटी अहाना ने आंखें खोलकर उसे देखते हुए सवाल किया। अक्षय उसका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। अव्युक्त। नाम सुनकर अहाना की आंखों की पुतलियां फैल गईं। इतना डिफिकल्ट नाम? अव्युक्त मीन्स क्लियर माइंड एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मुझे पसंद है ये नाम। और अगर लिटिल चैंप की जगह अब बेबी प्रिंसेस हुई तो? अहाना ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सवाल किया। अक्षय पल भर को सोच में पड़ गया। सोचा नहीं है, बट आई नो कि लिटिल चैंप ही आएगा। एक बार फिर बिना किसी ठोस वजह के उसका वही बेसलेस जवाब, उसका विश्वास कि लड़का ही होगा। अहाना ने बुरा सा मुंह बना लिया। आपको बेटे की बहुत चाहत है। ऐसा नहीं है, अगर बेटी हुई तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो अपने पापा की प्रिंसेस होगी, पर मुझे लगता है कि बेटा ही होगा, जिसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बस मुझे ऐसा फील होता है। अक्षय अब की बार बेहद संजीदा था और अहाना एकटक उसे देखते हुए जयेश जी के बारे में सोचने लगी थी। आखिर वो भी तो अपने पापा की प्रिंसेस थी। अगले दिन अक्षय ने रोज की तरह अहाना को सहारा देकर वॉक करवाया, नाश्ते के साथ उसकी दवाई खिलाई, फिर शाम को जल्दी आने का वादा करके और उसे अपना ध्यान रखने को कहकर हॉस्पिटल निकल गया। घड़ी दोपहर के 12 बजा रही थी। अहाना दादी के कमरे में लेटी थी और रूपाली जी ड्राइंग रूम में बैठी दोपहर के लिए सब्जी काट रही थी, जब उन्हें किसी का फोन आया और वे आनन फानन में घर से निकल गई। कमरे में लेटी अहाना को सुबह से ही कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था और मन भी घबरा रहा था, इसलिए रूपाली जी के कहने पर वो अंदर जाकर लेट गई थी। अचानक ही उसके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ और दर्द से चीखते हुए वो रूपाली जी को पुकारने लगी। घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था जो उसकी चीख पुकार सुनता। इस बात से अनजान की रूपाली जी भी घर पर नहीं है। दर्द से तड़पती अहाना बिलकते हुए उन्हें पुकार रही थी, पर बहुत देर बाद भी रूपाली जी अंदर नहीं आई। पसीने से लथपथ अहाना ने खुद को संभाला और किसी तरह अपने पेट को थामे पलंग से नीचे उतरने लगी। एक पैर नीचे रखते ही उसका पैर पिसला, अपना वजन संभाला नहीं गया और दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उस सुनसान वीरान घर में उसकी दर्द भरी चीखें घुट कर रह गईं। अपने पेट को थामे वो दर्द से तड़पती रही, रोती रही, बिलकती रही, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो फर्श पर लगा सफ़ेद मार्बल खूनी रंग में रंग गया और धीरे धीरे अहाना अपने होश खो बैठी। आखिरी दफ़ा उसके कांपते लबों से बिखरी हुई धीमी सी आवाज़ बाहर आई, अक्षय जी। दूसरे तरफ अक्षय किसी पेशेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहा था। एकाएक उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, हाथ से रिपोर्ट छूट गई और अजीब सी बेचैनी और घबराहट ने उसके मन को घेर लिया। अन्वय लंच के लिए घर लौट रहा था जब रास्ते में उसकी नज़र गोलगप्पे की शॉप पर पड़ी। मन में अहाना का ख्याल आया और चाट पापड़ी पैक करवाकर वो खुशी खुशी घर की ओर बढ़ गया। सहगल निवास पहुंचा तो दरवाजा खुला देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने बाइक गेट के सामने लगाई और भाभी भाभी पुकारते हुए घर के अंदर चला आया। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही फोन की आवाज उसके कानों से टकराई। आगे बढ़कर देखा तो सोफे के सामने लगे टेबल पर अहाना का मोबाइल रखा था, जिस पर अक्षय की कॉल आ रही थी। अन्वय ने वहीं खड़े खड़े नजरें रसोई की ओर घुमाई। महाना अहाना थी और ना ही रूपाली जी कहीं नजर आ रही थी। अन्वय की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं और उसने आगे बढ़कर कॉल रिसीव कर ली। हेलो भाई। अक्षय, जो बेचैनी से अपने चेंबर में चक्कर काट रहा था, अन्वय की आवाज सुनकर चौंक गया। अन्वय, अहाना का फोन तेरे पास क्या कर रहा है और अहाना कहाँ है? मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही? घबराते दिल के साथ अक्षय ने व्याकुल स्वर में एक के बाद एक कई सवाल किए। अन्वय ने नासमझी से कंधे उचका दिए। मैं तो लंच के लिए घर आया था भैया, भाभी का फोन टेबल पर रखा था और आपकी कॉल आ रही थी तो उठा लिया। भाभी यहाँ नहीं है, शायद दादी के कमरे में लेटी होंगी, मैं अभी देखकर बताता हूँ। देख, अगर सो रही हो तो रहने देना, वरना बात करवा मेरी उनसे। अक्षय अब भी बहुत विचलित और बेचैन था। उसके शब्दों में अहाना के लिए परवाह, चिंता और एक डर सा महसूस किया अन्वय ने और हामी भर दी। जी भाई, मैं देखता हूँ। चाट पापड़ी की पॉलिथीन हाथ में थामे और फोन कान पर लगाए अन्वय खुशी खुशी दादी के कमरे की ओर बढ़ गया। पर जैसे ही उसने दहलीज पार की और नजर सामने पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ से पन्नी के साथ साथ फोन भी छूटकर नीचे जा गिरा और भय से उसके मुंह से चीख निकल गई। भाभी! अन्वय चीखते हुए बदहवासा अहाना की ओर दौड़ा। वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर को अपनी गोद में रखकर घबराया हुआ सा वो काफी बार अहाना के गालों को थपथपाते हुए उसे पुकारता रहा। अहाना का खून से लथपथ बेजान शरीर देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया था। जब अहाना के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उसने तुरंत जाकर जमीन पर गिरा अहाना का फोन उठाया, जिसकी स्क्रीन पर कुछ क्रैक्स आ चुके थे, पर फोन अब भी नहीं कटा था और उसकी चीख सुनकर अक्षय कब से घबराया हुआ सा उसे पुकारे जा रहा था। हेलो भाई! अन्वय की आंसुओं से भीगी आवाज सुनकर अक्षय की धड़कनें थम गई। अन्वय, क्या हुआ? क्या हुआ अहाना को? सब ठीक तो है? उन्हें और हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? अक्षय की बिखरती आवाज में कुछ गलत होने का भय समाया था और यहाँ अहाना की हालत देखकर अन्वय की हिम्मत टूटती जा रही थी।
भाई, भाभी को कुछ हो गया भाई? वो जमीन पर गिरी है, बहुत सारा खून निकल रहा है और वो आंखें भी नहीं खोल रही, कुछ बोल भी नहीं रही।